Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो यहां नहीं बताया और जगह बताया, यहां अभी पहले बताया होगा। देखो जैसे आपने रसगुल्ला खाया तो अब हिसाब लगाओ किसको क्या क्या मिला। भूख लगी हुई थी आपको, आपको भूख लगी हुई थी, आपको लगी हुई थी क्या? अरे प्राणों को लगी हुई थी ना भूख। तो रसगुल्ला खाया तो प्राणों की तो भूख मिट गई ना रहे, और ये जो पेट है इसको बोझा मिल गया। इसको जितने बोझ डाल करके पेट भरने की आदत हो जाती है ना, उतनी ही हो जाती है। चार रोटी खाता है तो चार में बढ़ जाता है, दो खाता है तो दो में बढ़ जाता है। तो इसको मिल गया बोझा पेट को, प्राण की मिट गई भूख, और जीभ को क्या मिला? स्वाद। और आपके मन को क्या मिला? तृप्ति है। और बुद्धि को क्या मिला? ज्ञान मिला ना, कि तृप्ति मिली, ये ज्ञान मिला। सबको जो जो मिला उसका ज्ञान मिला। और श्रीमान जी आप स्वयं को क्या मिला? ठनठनपाल, कुछ नहीं। तो महात्मा कहते हैं कि जिसका जैसा स्वरूप है उसी स्वरूप के अनुसार उसका भोजन होता है। अब कहो कि आपको बस ठन ठन पाल दे रहे हैं तो काम बन जाएगा। अरे नारायण, इन सबको जो 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 चाहिए वो देना पड़ेगा। आप जिसका जो भोजन है उसको उसी रूप से प्रदान करना पड़ेगा। लेकिन जो अभोक्ता है उस अभोक्ता को क्या मिलेगा? तो उसे तो सिर्फ शुद्ध ज्ञान मिलेगा, माने जिसमें ये खाने की रसगुल्ला नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं ही हूं। क्या खाया? मैंने अपने को ही खाया। ब्रह्म जो है सब अपने को ही खा रहा है। ब्रह्म ने ही तो अन्न बनाया और ब्रह्म ही खा रहा है, और ब्रह्म ही उसको अंत में जाकर के अपने स्वरूप के साथ एक अनुभव कर रहा है। तो असल में तो कुछ हो नहीं रहा है, बस ये सारी के सारे जैसे सपने में आपको भूख लगे और रसगुल्ला खा लो तो क्रियाएं प्रक्रियाएं तो वहां भी सब यही होंगी। भूख लग रही थी, रसगुल्ला भी आया, स्वाद भी आया, सब बातें हुई, लेकिन सपने की चीजें थी, कुछ हुआ हवाया तो नहीं। जागते ही सब पर पानी फिर गया। तो ऐसे ही ये जो अपना आत्मस्वरूप है इसमें जब मनुष्य की बुद्धि जग जाती है तो ये सब क्रियाएं अपने आप होती रहती हैं स्वप्न की तरीके से। लेकिन उसका भोजन तो सिर्फ ज्ञान होता है। अच्छा, अखबार भरे पड़े हैं और अखबार पढ़ पढ़ के आपस में लड़ते हैं पढ़ने वाले। कोई एक पार्टी का समर्थन करता है, कोई दूसरी पार्टी का समर्थन करता है। अब सबका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एक ही है, वही अखबार, वही अखबार वो पढ़ रहा है वही। अरे ये इसका मतलब थोड़ा ही है, इसके पीछे उसका हाथ है, उसका यूं है, उसका यूं है ना। और आपस में लड़ाई होती है। हमारे यहां तो इसीलिए अखबार आना ही बंद कर दिया बहन। एक दफे लड़ाई हो गई तो बोले अब कोई अखबार नहीं आएगा आश्रम में। जिसको पढ़ना हो अपना खरीदे और पढ़े। तो आत्मा तो कहते हैं शब्दाधीन अदनाथ आदिति ताम। अब वो अदिति कहां रहती है? तो बुद्धि में तो रहती है ही ना। बुद्धि को ही अदिति बोलते हैं। बुद्धि में जो परमात्मा का बीज है हिरण्यगर्भ रूप से, उसको अदिति बोलते हैं। हिरण्यगर्भ को अदिति बोलते हैं। तो जैसे शरीर काम तो शरीर करता है, नाम शरीर वाले का होता है, तो कहीं शरीर वाले की प्रधानता से बोला जाता है, कहीं शरीर की प्रधानता से बोला जाता है। तो गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तिम अदितिम, वो बुद्धि में पैदा होती है अदिति, और क्या भूते भी, यो भूते भिर्व्यजायता, भूतों के सहित पैदा होती है। देखो थोड़ी सी सांख्य प्रक्रिया इसमें समझनी आवश्यक है, ये सर्वत्र काम आती है। सांख्य दर्शन को हम भले ही क्रिटिसाइज करें, लेकिन सिद्धांत को क्रिटिसाइज करते हैं, प्रक्रिया को क्रिटिसाइज नहीं करते। सांख्य की प्रक्रिया वेदांत में खूब अच्छी तरह स्वीकृत है, और भगवान कृष्ण ने तो गीता में सांख्य की प्रक्रिया पूरी ही स्वीकार कर ली है। प्रक्रिया तो क्या है, बोले पहले हुई प्रकृति, पुरुष, पुरुष और प्रकृति, फिर प्रकृति के तीन गुण हुए, फिर उन गुणों में क्षोभ हुआ, उससे फिर महतत्व हुआ, महतत्व के बाद फिर अहंकार हुआ, अहंकार के बाद में फिर पंच तन्मात्राएं हुई, फिर पंच तन्मात्राएं आपस में मिली, पंचीकरण हुआ, पंचभूत हो गए, फिर पंचभूतों से मिलकर के हमारे आप सबके शरीर हुए। अब ये जो अदिति है ये कहां रही, तो महतत्व का नाम अदिति है, तो ये महतत्व जब पैदा हो जाएगा तो उसके बाद भूत भी पैदा ही होंगे, अहंकार पैदा होगा, ऑटोमेटिक है ये सारा मामला। इसमें क्रम तो सिर्फ बुद्धि में बैठाने के लिए बताया गया है। ये उपनिषदों में दोनों तरह की प्रक्रियाएं मिलती हैं, क्रम क्रम से सृष्टि होती है ये भी बताया है, और एक साथ सृष्टि हो जाती है ये भी बताया है। तो जहां क्रम नहीं बताया है वहां क्रम लगा लो, जहां क्रम बताया है वहां एक साथ हो जाते हैं ये भी ख्याल कर लो। तो इसलिए यहां भूते भेद बोल दिया, माने पंचभूतों की सृष्टि भी अदिति से ही होती है, भू पंचभूतों के सहित अदिति की सृष्टि, वो हाँ अदिति की सृष्टि होती है। तो सहित का मतलब यहां क्रम से है, क्रम से सृष्टि होती है। अब ये ऋग्वेद का मंत्र है, महाराज श्री ने उद्धृत किया है, आदिति द्यौ, आदिति अंतरिक्षम, आदिति माता पिता, सपुत्र विश्वे देवा अदिति पंचजना, आदिति जातम, आदिति जनित्वम। सब अदिति ही है नारायण। द्यौ अंतरिक्ष, माता पिता पुत्र, सब देव देवता, पंचभूत, और जो कुछ भी कार्य और कारण है ये सब अदिति ही है। तो एक बीच में अदिति पकड़ ली, कल हिरण्यगर्भ को पकड़ लिया था, आज उसी बात को अदिति के नाम से बोल दिया। बोले भाई ये सब इतनी सारी प्रक्रिया चल रही है, तो क्रिया जो है वो देखो, ज्ञान तो स्वयं प्रकाश होता है, जरा इस बात को समझ लेना। ज्ञान जो होता है वो तो स्वयं प्रकाश होता है, स्वयं प्रकाश माने उसको जानने के लिए किसी दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो अंधेरा हो तो बल्ब जला लो, लेकिन अब बोले बल्ब तो जल रहा है, अब बल्ब को देखने के लिए दूसरा बल्ब जलाओगे क्या? तो जैसे अपेक्षा से बल्ब जो है वो स्वयं प्रकाश है, ऐसे ही ये आत्मदेव जो है ये तो स्वयं प्रकाश है, इनको जानने के लिए किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है, और ये सबको जानते हैं। तो ज्ञान को तो कर दो, बाकी सब में क्रम है। अच्छा अगर एक साथ सृष्टि हो जाए तो घपला होएगा कि सृष्टि ठीक होगी? अरे बालक 9 महीने में 10 महीने में बाहर निकलता है, तो पुष्ट होकर निकलता है, और इधर पति पत्नी मिले और उधर बच्चा तैयार, अगर ऐसा हो तो कभी मिलेंगे ही नहीं लोग, डर के मारे के ये तो जो है कितने बच्चे पैदा होंगे। अब ये कीड़े मकोड़े इनके अंडे पैदा होते हैं तो कितने अंडे पैदा होते हैं उसमें, इसलिए ज्यादा अंडे होते हैं क्योंकि वहां मरने की प्रक्रिया ज्यादा है, जितनी पैदा होने की प्रक्रिया है उससे ज्यादा मरने की है। अगर 1000 अंडे देती है चींटी मान लीजिए तो वो 1000 अंडों में 700-800 अंडे तो नष्ट हो जाएंगे, 200 बचेंगे, फिर उनमें भी कोई बाद में नष्ट होगा, कुछ और नष्ट होगा। तो ये तो भगवान ने बहुत अच्छा किया कि क्रम रख दिया। तो ये अदिति जो है ये क्रम से सब बनी हुई है, इन्हें शास्त्र की दृष्टि से कोई सा भी क्रम आप इस्तेमाल कर लो। तो इसमें आत्मा क्या रहा, ये तो क्रिया शक्ति होगी। क्रिया जो है वो स्वयं प्रकाश नहीं होती है, ज्ञान स्वयं प्रकाश होता है। अब कोई चीज चल रही, जैसे गाड़ी चल रही है सड़क के ऊपर, तो गाड़ी का चलना गाड़ी को पता है कि गाड़ी का चलना किसी चेतन को पता है? चेतन को पता है ना। तो क्रिया जो होती है वो हमेशा पर प्रकाश से होती है, और ज्ञान जो होता है वो हमेशा स्वयं प्रकाश होता है। तो ये अदिति जो है ये क्रिया शक्ति है, माया है। माया किसी बुरे अर्थ में मत लेना, क्रिया शक्ति है। तो जैसे परमात्मा की जितने भी ये उपास्य रूप है ना, वो सब कहीं राधा जी बैठी हैं, कहीं रुक्मिणी जी बैठी हैं, कहीं लक्ष्मी जी बैठी हैं, कहीं पार्वती जी बैठी हैं। तो ये शक्ति जो है वो हमेशा शक्तिमान के साथ रहती है। तो शक्तिमान जो है वो शक्ति को दिशा देता है। ये पति को जो पति बोलते हैं ना, इसलिए नहीं कि वो उसका भरण पोषण करता है, ये तो बहुत मोटा अर्थ है। पति माने ये शक्ति है असल में, स्त्री जो है ये शक्ति है। इस शक्ति को दिशा देने का काम पुरुष का होता है, नहीं तो आसमान फट जाएगा ना, इतनी शक्ति है इसमें। एक इंदिरा गांधी ने सारे विश्व को हिलाकर रख दिया, पाकिस्तान टूट गया। अगर 10-20 इंदिरा गांधी पैदा हो जाए तो क्या हाल हो। तो ये शक्ति है, इसको दिशा देने का काम पति, इसीलिए उसको बोलते हैं हस्बैंड। वो कुछ महिलाएं आपस में कह रही थी कि भैया हमारी शादी में तो जो है रवि बैंड आया था, कोई कह रहा कि हमारी शादी में जो है जगत बैंड आया था, बैंड माने बाजा। तो एक महिला अंत में बोली कि भैया हमारी शादी में तो हस्बैंड आया था, तुम्हारे में रवि बैंड आए होंगे। तो ये ईडियम भी है इंग्लिश में, टू हस्बैंड दी एनर्जी। तो ये शक्ति रूपिणी है स्त्री जो है, इसको दिशा देने का काम पुरुष का होता है। वो उसको लक्ष्मी रूप से भी प्रस्तुत कर सकता है और उसको डायन रूप से भी प्रस्तुत कर सकता है। तो या प्राणेन संभवती अदितिर देवतामयी, गुहाम तो दिखाना तो है पुरुष को, दिखा रहे हैं स्त्री के माध्यम से। बोले आप इनको पहचानते हो कि हाँ ये बिमला जी हैं, तो ये बिमला जी के हस्बैंड हैं। माने बताना तो बिमला जी के हस्बैंड को है, चूंकि बिमला जी को पहचानते हैं इसलिए पहचान के द्वारा उनके हस्बैंड का ज्ञान करा दिया। तो क्रिया को तो सब जानते हैं, ज्ञान को कोई कोई जानता है, तो क्रिया के द्वारा ज्ञान का ज्ञान करा देना ये उपनिषद का महात्माओं का काम होता है। इसीलिए तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण की बात मैंने प्रारंभ की थी। अब एक दूसरा तटस्थ लक्षण बताते हैं। अरण्योर्निहतो जात वेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः दिवे दिवे ईड्यो जाग्रवद्भिर् हविष्मद्भिर् मनुष्येभिर् अग्निः एतद् वै तत्। अब यही है वो आत्मा जिसको तुमने पूछा नचिकेता, कौन सा है जी? बोले अग्नि को तो पहचानते हो तुम, सारे रोजाना सब अग्नि से काम ही करते हैं, बिना अग्नि के तो पेट ही नहीं भर सकता है नारायण। और पेट की बात नहीं है, ये संसार की जितनी प्रोडक्शन है और जितनी स्थिति है ये सब अग्नि से ही है। आपके शरीर का टेम्परेचर कितना है? 98.4 फ़ारेनहाइट। अच्छा, तो 98.4 और अगर आपका मान लो 90 रह जाए तो या 115 हो जाए तो गए काम से ना, दोनों हाथों दोनों तरीके से। तो ये अग्नि भी बैलेंस में रहती है तब तो ये निर्माण करती है, और अगर अति की हो जाती है तो ये नष्ट भी करती है। अब परमाणु बम जो है अति का काम करता है, तो वो खैर निर्माण भी करता है और ध्वंस भी करता है, दोनों ही काम है, वो तो उसके उपयोग के ऊपर है। लेकिन ऐसी कोई आप बताओ सृष्टि की उत्पत्ति जो बिना गर्मी के पैदा हो सके? नहीं हो सकती। और आज तक मनुष्य ने इतनी सारी चीजें बनावटी पैदा कर ली हैं, लेकिन फायर, ये जो अग्नि है, ये बनावटी पैदा नहीं कर सकती। ये कोई गैस आदमी ने थोड़ी बनाई है, ज्वलनशीलता ये तो प्राकृतिक गुण है उसका। आप तो सिर्फ माचिस दिखाते हो, नारायण जल जाती है। तो अग्नि 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 चारों ओर अग्नि अग्नि है, ये बैलेंस में रहे तब तो ठीक है। अच्छा, क्रोध आता है तो क्या होता है? गर्मी बढ़ती है कि नहीं? ब्लड प्रेशर बढ़ता है आपका तो क्या होता है? गर्मी बढ़ती है कि नहीं? और ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है तो गर्मी घट जाती है। तो बिना गर्मी के तो कुछ होता ही नहीं। बोले बस इस गर्मी को ही परमात्मा समझो। अरे बोले भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, गर्मी तो ये भौतिक है, परमात्मा कैसे हो जाएगा? तो अभी बताया ना, तटस्थ लक्षण से फिर लक्षित कराते हैं। तो कैसे? बोले ये बात आपको समझ में नहीं आएगी यदि आप अरणि मंथन आपने कभी नहीं किया। आजकल तो माचिस जलाते हैं ना, तो वो भी मंथन ही है, आप रगड़ो नहीं उसकी तीली को तो उसमें से अग्नि थोड़ी प्रकट हो जाएगी। पहले वो व्हाइट फॉस्फोरस चलता था तो हाथ पर भी रगड़ने से अग्नि पैदा हो जाती, लेकिन रगड़ना तो जरूर पड़ेगा। तो कहते हैं कि ये रगड़ पट्टी गुरुजी के साथ मिलकर करो। अरण्योर निहतो जात वेदा, अरणी जो होती है जिसमें यज्ञ में जो जिससे अग्नि उत्पन्न की जाती है, अब सबने शायद नहीं देखा होगा, पत्थर पर पत्थर मारो तो चिंगारी निकलती है ना, तो वो चिंगारी में यदि मां आप रुई रख दो और थोड़ा सा उस पर स्प्रिट डाल दो तो उस चिंगारी एकदम जो है वो रुई आग पकड़ लेगी। तो ऐसे ही लकड़ी शमी की लकड़ी होती है, शमी वृक्ष की, तो वो एक के ऊपर एक अरणी होती है, जैसे अपनी चक्की होती है उस प्रकार से, तो उसको मथते हैं फिर, तो वो क्या होता है, नीचे की अरणी बोलते हैं उसे, नीचे की अरणी ऊपर की अरणी। तो नीचे ऊपर की अरणी जब आपस में रगड़ती हैं तब उसमें से अग्नि पैदा होती है। तो वहां पर वो रुई वगैरह रखते हैं तो वो रुई आग पकड़ लेती है और उससे फिर यज्ञ अग्नि जल जाती है, अरणी मंथन बोलते हैं उसको। सर्वत्र यही होता है नारायण, संतान पैदा करते हो तब भी अरणि मंथन ही होता है, और क्या नाम है ये ज्ञान पैदा करते हो तब भी अरणि मंथन ही पैदा होता है, अरणि मंथन ही करना पड़ता है। ये गुरु जो है ये तो है ऊपर की अरणि, और शिष्य जो है ये है नीचे की अरणि। और गुरु का जो शास्त्र वाक्य है वो है नारायण बीच में जो अग्नि है। अब जैसे मैंने बोल दिया आपके सामने ब्रह्म बोल दो आत्मा बोल दो, अब फ्लैट ईयर्स पे पड़े कुछ समझे ही नहीं क्या आत्मा का शब्द अर्थ है क्या ब्रह्म शब्द का अर्थ है, तो कुछ थोड़ा जानकार तो होना चाहिए ना, शब्द का ज्ञान तो होना चाहिए। तो ऐसे ही ये जो तत्संधानम प्रवचनम, ये उत्तर अरणि माने ऊपर की अरणि गुरु और नीचे की अरणि शिष्य, इनका जब परस्पर आपस में विचार विमर्श होता है, ये पहले प्रवचन प्रणाली नहीं थी नारायण ज्ञान होने के लिए, अब आजकल तो प्रवचन प्रणाली है ना, और फिर इसमें भी अब वो सीडी वीडी ये दुनिया भर की चल गई है, तो वो जैसे विद्यार्थी लोग अब क्लास में अटेंटिव नहीं रहते हैं बोले वो तो वहां बाजार में मिल जाएगी किताब, घर पर पढ़ लेंगे एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे, और जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो क्लास में ही इतना पकड़ लेते हैं कि फिर किताब से तो उसे पुष्ट करते हैं। ऐसे ही है, तो पहले जो है ये लेक्चर सिस्टम नहीं था, सारे उपनिषद जो है वो गुरु शिष्य संवाद के रूप में ही है। तो गुरु शिष्य संवाद के रूप में ये अरणि मंथन होता है, इसमें से क्या निकलती है कि ज्ञानाग्नि निकलती है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरते तथा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितं बुधा। दो दफे ज्ञानाग्नि का प्रयोग भगवान कृष्ण ने किया है गीता में, और इसका काम क्या है कि कर्म की अग्नि को जला देती है। ज्ञान की अग्नि जो है वो कर्म की अग्नि को जला देती है। ये कर्म जो है ये भी पारिभाषिक शब्द है यहां, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम ज्ञानाग्नि भस्मसात कुरते तथा सर्व कर्माणि भस्मसात। कर्म जो है ये अविद्या को ही कर्म बोलते हैं, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते, ये ईशावासी उपनिषद की श्रुति है। वहां अविद्या का अर्थ भगवान शंकराचार्य जी ने कर्म ही किया है। तो ये अविद्या को जला देती है, क्या अरणि मंथन, गुरु और शिष्य के बीच का जो अरणि मंथन है ये अविद्या को जला देती है, अर्थात कर्म संस्कारों को जला देती है, अर्थात कर्म संस्कारों का जो बंधन है उनको जला देती है। सारी गीता की समस्या और सारे शास्त्रों की समस्या एक ही है कि कर्म होते हुए कर्म करते हुए कर्म के बंधन से कैसे ऊपर रहे। अगर आप इस समस्या को ओवरलुक कर दोगे तो न गीता समझ में आएगी न उपनिषद समझ में आएगी। कर्म माने एक यही खाली कर्म, दुकान पर जाना और नौकरी करना, इसी को कर्म थोड़े ही बोलते हैं। वो तो क्रिया मात्र जो कुछ भी होती है उसका एक कर्ता होता है, उसका एक उद्देश्य होता है, उसकी एक विधि होती है। तो किसी कर्ता के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक जो क्रिया होती है उसको कर्म बोलते हैं। अब कर्म का ये स्वभाव है कि वो कर्म करने के बाद कर्ता को पकड़ लेता है, मैंने किया। ये जो चित्त है ना, चित्त मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो चित्त है डबलता वाला, तो इस चित्त में क्या होता है कि जितना भी हम कर्म करते हैं इसके संस्कार सब उसमें जाकर शेष हो रह जाते हैं। तो ये संस्कार में क्या है कि मैंने किया, ये चित्त ही है नारायण जिसको चित्रगुप्त जाकर खोलता है मरने के बाद, बोले तुमने ये काम किया, बोले सरकार मैंने तो नहीं किया। बोले किया कैसे नहीं, तुम्हारे चित्त में लिखा हुआ है कि मैंने किया। आप दूसरे को बेवकूफ बना सकते हो, अपने किए हुए को आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने नहीं किया है। किया है तो वहां पर ये अंकित होगा कि किया है, और नहीं किया है तो ये अंकित होगा कि नहीं किया है। लेकिन किया हो और फिर उसे नकार दो आप, ये संभव नहीं है। इसीलिए तो कर्म का फल अवश्यंभावी है, अवश्य भोगना पड़ता है। परंतु एक ही विधि ऐसी है कि भोगना न पड़े और आप कर्म से ऊपर हो जाओ, और वो विधि है ज्ञान की। इस चित्त को जला दो। जला दो माने फाइल जलाने की तरह से जलाना नहीं है, जैसे रस्सी जलाते हैं ना, तो रस्सी जल जाती है तो क्या है, उसको आप जली हुई रस्सी को पकड़ो तो उसमें आकृति तो मालूम पड़ती है कि रस्सी है ये, लेकिन पकड़ोगे तो राख के अलावा कुछ नहीं है ना। तो यमराज जो है वो पकड़ना तो चाहता है चित्त, ज्ञानी के चित्त को, मगर वो तो राख हो चुका है, बस आकृति आकृति है उसमें। तो वो आकृति जो है ये संसार का काम तो चला देती है, उसका जीवन तो चला देती है, लेकिन फल भोग आगे का नहीं कराती, क्योंकि वो चीज ही नहीं है, वो तो जल चुका मामला। आज भी कितना भी हो, मुर्दा गढ़ा हुआ हो ना, मुसलमानों के ईसाइयों के, इनके तो गाड़ दिए जाते हैं, तो उनके मरने के बाद भी उन पर मुकदमे चलाए जाते हैं और गड़ा हुआ मुर्दा उसमें से निकाल लेते हैं। और अपने यहां तो जला दिया, और राख को जो है गंगा जी में या समुद्र में या कहीं डाल दिया, और बोले अब तो उसका कुछ बचा ही नहीं। तो अगर कोई मर गया तो फिर मुकदमा नहीं चलता उस पर, ये भारतीय कानून है। नाम बदनाम करना हो तो भले ही मुकदमा चला दो उसके ऊपर, सजा नहीं ले सकते, सजा तो वहां मिलेगी। तो अरण्य और निहतो जात वेदा, ये अरण्य में जो ज्ञानाग्नि छिपी हुई है बस यही परमात्मा का स्वरूप है। तो बोले छिपी हुई है तो कैसे छिपी हुई है, कि जैसे गर्भिणी स्त्रियों के गर्भ छिपा रहता है ऐसा। गर्भ एवं सुभ्रतो गर्भिणी भी, गर्भिणी स्त्रियां जैसे अपने गर्भ की रक्षा करती हैं, ऐसे ये गुरु और शिष्य जो है अपने ज्ञान की रक्षा करते हुए ये संवाद रूपी अरणि मंथन से ज्ञानाग्नि पैदा करते हैं। वही अरणि मंथन से जब वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, यज्ञाग्नि बन जाती है, तो फिर उसकी स्तुति गाते हैं कर्मी लोग, हे अग्निदेव आप ऐसे हो, हे अग्निदेव आप ऐसे हो। और जब शरीर छोड़ते हैं तो वही अग्निदेव उन्हें स्वर्ग और दूसरे दूसरे लोकों में ले जाते हैं। दिवे दिवे ईड्यो जागृत बद्भिर हविष्मद्भि मनुष्य भी अग्नि, तीन अग्नियों का यहां वर्णन किया। मनुष्य की अग्नि, मनुष्य जो करते हैं ये लौकिक कर्म है, और ये हविष करने वाले ये वैदिक कर्म है, और प्रमाद जागृत के समान माने प्रमाद रहित हो करके ये योगी लोग हैं। ये सब अग्नि की ही उपासना करते हैं, और गुरु शिष्य बैठ करके जो अरणि मंथन करते हैं, संवाद करते हैं ब्रह्म ज्ञान संबंधी, वो भी जो है अग्नि की ही उपासना है। उस अग्नि से कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, और बाकी अग्नियां जो हैं वो सब लोक लोकांतरों को प्राप्त कराती हैं, पुनर्जन्म दिलाती हैं। तो कौन सी अग्नि श्रेष्ठ है भाई बताओ? जिससे पुनर्जन्म का चक्कर ही खत्म हो जाए, ज्ञानाग्नि। तो ये यहां संकेत से ये बात बताई कि अग्नि जो है ये परमात्मा का स्वरूप है, इसमें परमात्मा को देखना चाहिए। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।